ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नागरिकता दूसरे संशोधन विधेयक पर राष्ट्रीय सभा द्वारा किए गए संशोधन प्रस्ताव को प्रतिनिधि सभा द्वारा बहुमत से स्वीकृत। विधेयक संशोधन में मां के नाम से नागरिकता प्राप्ति को सुनिश्चित की है, गृहमंत्री रमेश लेखक का कथन। चीन दौरा पूरा कर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आज लौट रहे हैं स्वदेश। निकपा एमाले की परसों से ललितपुर की गोदावरी में होने वाले विधान महाधिवेशन की तैयारी पूरी। और चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित सैन्य परेड में चीन, रूस और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति एक साथ शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में नेपाल नागरिकता दूसरा संशोधन विधेयक 2081 पर राष्ट्रीय सभा द्वारा किए गए संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। गृहमंत्री रमेश लेखक द्वारा नेपाल नागरिकता दूसरा संशोधन विधेयक 2081 पर राष्ट्रीय सभा द्वारा किए गए संशोधन पर विचार करने के लिए सभा में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को सभा के बहुमत द्वारा स्वीकृत किया गया। विधेयक पर हुई सैद्धांतिक चर्चा के दौरान सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए गृहमंत्री लेखक ने कहा कि नागरिकता विधेयक नागरिकों को सेवा प्रदान करने और संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विधेयक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकता विधेयक के संशोधन ने मां के नाम से नागरिकता प्राप्ति को सुनिश्चित किया है और यह प्रत्याभूत करता है कि मातृ वंश भी होता है, मां से भी वंश कायम होता है और मां के नाम से संतान नागरिकता प्राप्त कर सकती है। विधेयक पर चर्चा में सांसदों ने कहा कि मां के नाम से नागरिकता लेने का अधिकार और पिता का नाम लिखने की बाध्यकारी व्यवस्था को हटाया जाना लैंगिक समानता की दृष्टि से एक ऐतिहासिक कदम है। सांसदों ने कहा कि नागरिकता विधेयक नागरिकता संबंधी कई समस्याओं का समाधान करेगा, सभी नागरिकों को नागरिकता मिलना सुनिश्चित होगा और विदेश में जन्मे नेपाली मां की संतानों को भी नागरिकता पाने का अधिकार मिलना एक सकारात्मक व्यवस्था है। बैठक में प्रतिनिधि सभा के सचिव हर्कराज राय द्वारा जल संसाधन विधेयक 2081 के संबंध में राष्ट्रीय सभा से प्राप्त संदेश सहित विधेयक टेबल किया गया। बैठक में संघीय संसद की संयुक्त संसदीय सुनवाई समिति के रिक्त सभापति पद का निर्वाचन इसी भाद्र 20 गते शुक्रवार करने का निर्णय किया गया। इसकी जानकारी उपसभामुख इंदिरा राणा ने सभा को दी। इससे पहले प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सांसदों ने कृषि उर्वरक की समस्या, सिंचाई की समस्या, गन्ना और दुग्ध उत्पादक किसानों की समस्या, स्वास्थ्य और रोजगार की समस्या के समाधान के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित किया। सांसदों ने तराई के जिलों में पीने के पानी की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि नगरपालिका द्वारा टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है और तत्काल पीने के पानी की व्यवस्था करने की मांग सरकार से की। सांसदों ने संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित मध्य प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों को मिलने वाली सभी राहत और सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग की। सांसदों ने देश के विभिन्न हिस्सों में अवरुद्ध सड़क संचालन, टूटे मोटरवे पुलों के पुनर्निर्माण और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षण कराया। इसी बीच राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने आज भी प्रतिनिधि सभा की बैठक का बहिष्कार किया। विजिट वीजा प्रकरण की जांच के लिए संसदीय विशेष समिति जांच या उच्च स्तरीय न्यायिक जांच नहीं किए जाने का हवाला देते हुए दोनों दल पिछले जेठ 13 गते से सदन में विरोध और बहिष्कार करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जनवादी गणतंत्र चीन की आधिकारिक यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर आज स्वदेश लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री ओली ने चीन के राष्ट्रपति सी जिनफिंग के मैत्रीपूर्ण निमंत्रण पर इसी भाद्र 14 गते को चीन के लिए प्रस्थान किया था और यात्रा पूरी करके स्वदेश लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री ओली को बीजिंग स्थित अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर चीनी उच्च अधिकारियों, नेपाल के लिए चीन के राजदूत और चीन के लिए नेपाली राजदूत ने विदाई किया। इससे पहले उन्होंने आज बीजिंग में आयोजित विजय उत्सव संबंधी 80वें वार्षिकोत्सव के विशेष सैन्य परेड कार्यक्रम में भी भाग लिया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ओली ने चीन के राष्ट्रपति सी जिनफिंग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित विश्व के नेताओं से अलग अलग बैठकें की। उन्होंने इसी भाद्र 16 गते को तियानजिन में आयोजित संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। नेपाल सन 2016 से इस संगठन का संवाद साझेदार रहा है। संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 23 सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री ओली इसी भाद्र 14 गते को चीन के तियानजिन के लिए प्रस्थान किया था। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेकपा एमालेद्वारा इसी भाद्र 20 गति से ललितपुर के गोदावरी में आयोजित होने वाले दूसरे विधान महाधिवेशन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। विधान महाधिवेशन की तैयारियों की जानकारी देने के लिए पार्टी के केंद्रीय कार्यालय चासल में आज आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के महासचिव शंकर पोखरेल ने बताया कि दो उपाध्यक्षों द्वारा केंद्रीय समिति की बैठक में रखे गए अलग मत के दस्तावेज पर कोई मतभेद नहीं होने के कारण महाधिवेशन में इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। महासचिव पोखरेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अधिवेशन में पार्टी की ओर से अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा राजनीतिक प्रतिवेदन, पार्टी के उपाध्यक्ष एवं उप प्रधान तथा अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल द्वारा विधान संशोधन प्रस्ताव और महासचिव शंकर पोखरेल द्वारा संगठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की कार्यसूची तय की गई है। इस प्रकार केंद्रीय अनुसंधान आयोग के प्रमुख केशव बड़ाल, केंद्रीय लेखा आयोग के प्रमुख डॉ पुष्प कड़ेल, निर्वाचन आयोग प्रमुख डॉ विजय सुब्बा और केंद्रीय सलाहकार परिषद की ओर से अमृत कुमार बोहरा द्वारा भी अपने अपने निकायों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। इन सभी प्रतिवेदनों पर महाधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के बीच समूहों में चर्चा करने की व्यवस्था की गई है। एमाले के प्रचार विभाग प्रमुख राजेंद्र गौतम ने बताया कि भाद्र 20 से 22 तक चलने वाले इस दूसरे महाधिवेशन में 2026 प्रतिनिधि और आयोजकों सहित कुल 2315 लोग भाग लेंगे। जनमत पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की समन्वय बैठक तथा प्रशिक्षण इसी भाद्र 30 गति से आगामी आश्विन 5 गति तक आयोजित किए जाएंगे। बांकी से शुरू होने वाली समन्वय बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बर्दिया, कंचनपुर, कैलाली, नवलपरासी, रूपंदेही और कपिलवस्तु में किया जाएगा। ये जानकारी पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉ शरद सिंह यादव ने दी। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने मालपुत कार्यालय धूलीखेल कावरे प्लान चौक में कार्यरत खरीदार ज्ञानेंद्र प्रसाद भंडारी को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। कावरे प्लान चौक के पूर्व दुलाल घाट गावी ससात में स्थित फील्ड बुक में पंजीकरण छूट गए एक भूमि को मालिक के नाम पर पंजीकरण कराने के उद्देश्य से उन्हें एक सेवाग्राही से 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए आयोग के केंद्रीय कार्यालय टंगाल से गए एक दल द्वारा कार्यालय परिसर से ही गिरफ्तार किया गया। आयोग के प्रवक्ता राजेंद्र कुमार पौडेल ने जानकारी दी है कि आरोपी भंडारी के खिलाफ आगे की जांच जारी है। इस वर्ष की इंद्र यात्रा में रथ खींचने सहित विभिन्न भूमिकाओं में शामिल व्यक्तियों का 5 लाख रुपए तक का बीमा किया जाएगा। गुठी संस्थान द्वारा इंद्र यात्रा की तैयारी से संबंधित जानकारी देने के लिए आज आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि त्यौहार पर दिन रात काम करने वालों के लिए पहली बार बीमा की व्यवस्था की गई है। संस्थान के कार्यकारी प्रमुख शैलेश राजकुंवर ने बताया कि त्यौहार शुरू होने से लेकर समाप्त होने तक दिन रात काम करने वाले लगभग 100 लोगों का 1 लाख से 5 लाख रूपये तक का दुर्घटना बीमा किया जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित एक भव्य सैन्य परेड में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन एक साथ शामिल हुए। ये परेड चीन के सैन्य शक्ति और तकनीकी उन्नति का प्रदर्शन करने के लिए आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम में तीनों देशों के नेताओं की उपस्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया, जिसे वैश्विक स्तर पर रणनीतिक साझेदारी और एकजुटता के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। परेड में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों, अत्याधुनिक हथियारों और सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें मिसाइल प्रणालियां, लड़ाकू विमान और अन्य रक्षा प्रविधियां शामिल थी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नागरिकता दूसरे संशोधन विधेयक पर राष्ट्रीय सभा द्वारा किए गए संशोधन प्रस्ताव को प्रतिनिधि सभा द्वारा बहुमत से स्वीकृत। विधेयक संशोधन से मां के नाम से नागरिकता प्राप्ति को सुनिश्चित की गई है, गृहमंत्री रमेश लेखक का कथन। चीन दौरा पूरा कर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आज लौट रहे हैं स्वदेश। नेकपा एमाले की परसों से ललितपुर की गोदावरी में होने वाले विधान महाधिवेशन की तैयारी पूरी। और चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित सैन्य परेड में चीन, रूस और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति एक साथ शामिल। भइल। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।